ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम से। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल हमें विधि दी है भगवान की जो भक्ति है वो करने की। और वो विधि क्या है, कोई यदि हमें पूछे कि आप कौन से विधि का पालन करते हो और कौन से भगवान की आराधना करते हो, हाँ तो सरलता से हम यदि समझाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु हमें एक श्लोक देते हैं जिसमें कहा गया है, उनके जो पार्षद है वो कहते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता। तो वहां चैतन्य महाप्रभु का जो मत है उसका वर्णन करते हैं और उसमें कहा गया है कि यदि कोई कहे कि आपके परम आराधनीय कौन है तो शास्त्र कहते हैं सरल है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया। हमारे तो एकमात्र आराधनीय है और वो ब्रजराज नंद महाराज के जो तनय पुत्र है कृष्ण है वो हमारे आराधनीय है। और आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, कोई कहे केवल कृष्ण ही आपके आराधनीय है तो कहते नहीं नहीं केवल कृष्ण ही नहीं तद्धाम वृंदावनम, भगवान का धाम वृंदावन है वो भी हमारे लिए उतना ही क्या है पूजनीय है आराधनीय है क्योंकि वो कृष्ण से संबंध रखता है या कृष्ण से अभिन्न है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा हमें बैटल फील्ड से कुछ लेना देना नहीं है युद्ध स्थल से, वो कुरुक्षेत्र के वो इसलिए हमारा लेना देना है क्योंकि वहां क्या बोली गई है भगवद गीता, इसलिए वो जो युद्ध भूमि हमारे लिए पूजनीय है क्योंकि वह कृष्ण आराधनीय है। तो उसी प्रकार से भगवान और भगवान से जो संबंधित चीजें हैं वो उतनी ही आराधनीय है। उनको शास्त्रीय भाषा में तदीय शब्द इस्तेमाल किया है तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। फिर यदि कोई कहे कि आप कृष्ण की आराधना करते हो तो प्रोसेस कौन सी विधि अपनाई आपने उनकी आराधना करने की, तो कहा गया है रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गेन वा कल्पिता।
कि हमने वो विधि अपनाई है कृष्ण को प्रसन्न करने की जो विधि वृंदावन के गोपियों ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? वृंदावन की गोपियों ने। भगवान कृष्ण की जो आराधना या समर्पण की भावना उन्होंने दिखाई थी वो सर्वोच्च है, तो वो जो विधि है वो हमने स्वीकारी है। और कोई कहे कि आप मनगढ़ंत कर रहे हो शायद आपके मन के अनुसार, तो कहते नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इसके लिए प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम है। कौन सा प्रमाण है? भागवतम। जैसे कोर्ट में भी कोई जो एडवोकेट है वो प्रमाण प्रस्तुत करता है तो किसी उनके लॉ बुक से प्रस्तुत करता है, तो उसी प्रकार से जो भी हम भक्तिमय जीवन का अभ्यास करते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं, वो कोई हमारी मनगणन विधि नहीं है। वो कहां से हम सीखे हैं? शास्त्रों से। इसलिए शास्त्र क्या है? प्रमाण है। और सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है, सारे शास्त्रों का जो सार है, वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवत और भगवद गीता। महाराष्ट्र में एक संत हुए तुकाराम, वो एक सॉन्ग, एक भगवान के स्तुति में गीत लिखते हैं। वो कहते हैं कि भगवान का स्मरण केवल यही है, गीता भागवत करेति श्रवण। गीता को श्रवण करना और श्रीमद् भागवतम को क्या करना? श्रवण करना, यही भगवान का नित्य स्मरण है। तो इसलिए प्रभुपाद ने भी ये दो ग्रंथों पर बहुत जोर दिया। कौन से दो ग्रंथ है? श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। तो भगवद गीता क्या है हम हमेशा जानते हैं। भगवद गीता वो ऐसा गीत है जो भगवान ने अपने मित्र अर्जुन की समस्या का समाधान करने के लिए सुबह सुबह मोक्षदा एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में गा लिया, उनको आनंद देने के लिए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए। हम भी जब आजकल टेंशन में होते हैं लोग तो तुरंत काम में कुछ ना कुछ म्यूजिक डालते हैं, गीत डालते हैं ना, तो थोड़ा सा एंजाइटी लेवल कम हो जाता है। तो उसी प्रकार से परमानंद चिंता रहित जीवन हमें जीना है तो एक गीत लाभप्रद है, और वो केवल कौन सा है? भगवद गीता है। तो भगवद गीता भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है उसको समझाता है, और उसके आगे का अध्ययन क्या है? श्रीमद् भागवतम है। भागवतम क्या है? भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। गीता के सबसे अंतिम उपदेश भगवान ने, एक प्रकार से ये गीता का सार ही है कि सारे भौतिक धर्मों का त्याग कर दो, जो सो कॉल्ड धर्मास हैं, मन का धर्म है, शरीर का धर्म है, सामाजिक धर्म है, फिर ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सो बहुत सारे ऐसे धर्म हैं। तो एक प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये भौतिक धर्म आदि को त्याग करो और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, क्योंकि हमारा असली धर्म क्या है। धर्म को प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे शुगर का धर्म है मिठास, जैसे चिली मिर्च का धर्म है तीखापन, तो उसी प्रकार से ये जीवात्मा है उसका धर्म क्या है? सेवा करना, ये उसका धर्म है। चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी भौतिक धर्म को अपनाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सेवा किए बिना नहीं रह सकता। वो टैग लगा दे मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, क्रिश्चियन हूं, लेकिन अल्टीमेटली जो मनुष्य है या जीव है वो सेवा में लगा हुआ है, तो सेवा करना ही उसका गुण धर्म है। सेवा से आत्मा को जीव को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए भगवान कहते हैं ये सारे भौतिक धर्मों को त्यागो और एकमात्र मेरे शरण ग्रहण करो। इस प्रकार से भगवद गीता यहाँ समापन होती है। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मुझे समर्पण करो। तो ये तो हमें बता दिया, लेकिन वो समर्पण कैसे बढ़ेगा, कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, वो हमें कहाँ प्राप्त होता है? श्रीमद् भागवतम में। क्योंकि भागवतम क्या है? भागवत वो ग्रंथ है जिसमें भगवान और एक भक्त के बीच में प्रेममयी सेवा का जो आदान प्रदान है वो श्रीमद् भागवतम है। तो यहां तो बोला कि मेरी शरण ग्रहण करो, मीन्स मेरी सेवा में लगो, लेकिन वो सेवा कैसी करनी है, कैसे भगवान को प्रसन्न करना है, जिसके द्वारा हमारा जो हृदय है वो पूर्ण रूपेण भगवान के प्रति समर्पित हो सकता है, वो श्रीमद् भागवतम हमें प्रदान करता है। इसलिए भागवत का अर्थ है कि जहां दो व्यक्ति हैं, एक है भक्त और दूसरा है भगवान, और इन दोनों के बीच में प्रेममयी सेवा का जो आदान प्रदान होता है वो वास्तव में भक्ति है, वो वास्तव में भागवत ग्रंथ का एक में क्या है, विषय है। इसलिए श्रीमद् भागवतम आजकल लोग क्या करते, भागवतम को धंधा बना लिया है, कहां भी जाओ सप्ताह भागवत सप्ताह, बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं। तो ग्रंथों को, शास्त्रों को कहा गया है, शास्त्र तो एक कामधेनु के समान है, कामधेनु गाय होती है ना, शास्त्र में सुना होगा कभी कामधेनु, ऐसी गाय जो सारे आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है, जो भी इच्छा लेकर जाओ वो पूर्ति करेगी। उसी प्रकार से ये शास्त्र कामधेनु गाय के समान है, जिस भी भावना से आप शास्त्रों को अप्रोच करते हो उस भावना उस चीज को आप प्राप्त करते हो। इसलिए हाँ, जो ये लोग भागवत क्या देने के लिए है, कृष्ण का प्रेम देने के लिए है। इसलिए भागवत वो ग्रंथ है जो कृष्ण से, कृष्ण में और श्रीमद् भागवतम में थोड़ा भी अंतर नहीं है। शास्त्र कहते भागवतम में स्वयं ही वर्णन आता है, कलो नष्ट दृशा में शाम पुराणार को अधुनो उदिता, कि कलियुगा के जीव जो अंधे हो गए हैं कलियुगा के प्रभाव से, उनके लिए टॉर्च लाइट है श्रीमद् भागवतम। कृष्णे सदाम उपगते धर्म ज्ञाना दिवि सहा, कि कृष्ण अपने धाम में चले गए तो उन्होंने अपना दूसरा रूप प्रकट किया कलियुगा में, ग्रंथ अवतार शब्द अवतार, और वो क्या है, श्रीमद् भागवतम है। इसलिए भगवान और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवतम के प्रति किसी की आसक्ति जागृत होती है तो मानना चाहिए कि कृष्ण के प्रति भी उसकी रुझान या अटैचमेंट जागृत हो रही है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम जो साक्षात कृष्ण देने के लिए है, लेकिन लोग भागवतम को उस भावना से अप्रोच नहीं करते, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। कई लोग भागवत का आश्रय लेकर अपनी उपजीविका चलाते हैं, धन अर्जन करते हैं, कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए क्या करते हैं, भागवत का सहारा लेते हैं। तो भागवत तो काम देने के समान है, वो उनकी पूर्ति होगी, लेकिन उनको क्या नहीं मिलेंगे, कृष्ण नहीं मिलेंगे। इसलिए जो ग्रंथ है, शास्त्र है, उनको अप्रोच करना चाहिए कृष्ण प्राप्ति की एकमेव भावना, एकमेव भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। तो ऐसा ये महान श्रीमद् भागवतम है जिसमें भगवान के अलग अलग भक्तों का वर्णन है, भगवान के प्रति उनके समर्पण का वर्णन है, उनकी सेवा की महिमा का वर्णन है। तो ऐसे मैंने सोचा कि आज हम भगवान का एक अवतार है वामन देव, कौन सा अवतार, वामन देव, और दूसरी ओर कौन है उनके भक्त, बलि महाराज, कौन से भक्त है, बलि महाराज। तो बलि महाराज हमारे एक महान आचार्य है, तो जो 12 महाजन है उनमें से एक है बलि है। तो इस प्रकार से ये जो वर्णन है श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में हमें प्राप्त होता है, बल्कि पूरा इतना बल की बुक है, लेकिन आधा बुक ऐसा आप करोगे तो एग्जैक्टली आधे से शुरू होता है किसका वर्णन, वामन देव का और बलि महाराज का। तो ऐसा वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं। तो कभी भी भक्ति में जब हम लगते हैं तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि अभी बहुत हो गया, इतने दिनों से आता हूं, बहुत सीख लिया मैंने, जप करना सीखा, कुछ छोटी छोटी सेवाएं करना सीखी, लेकिन नहीं। हाँ, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मृत्यु के अंत समय तक हमें सीखना है। भगवत भक्ति क्या है, ये आखिरी सांस तक सीखने का विषय है, क्योंकि इसमें किसकी सेवा करते हैं हम, कृष्ण की। इसलिए आप देखो किसी को ये आलस नहीं आना चाहिए कि अभी मैं लंबा समय बीता, अभी मैं इतने साल हो गए या बूढ़ा हो गया हूँ, हाँ लेकिन नहीं, अभी मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। क्या भावना होनी चाहिए? मुझे हर रोज हर पल हर क्षण भगवान के बारे में सीखना है, भक्ति के बारे में सीखना है। अब देखो श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी का एक नाम क्या है? विद्यार्थिनी। क्या नाम है? स्टूडेंट कहते ना हिंदी में विद्यार्थिनी, तो राधा रानी का एक नाम विद्यार्थिनी है। तो वो विद्यार्थिनी का मतलब है राधा रानी हमेशा सीखती रहती है, हमेशा सीखती है, वो हमेशा सीखती है कृष्ण की सेवा। हाँ क्यों? क्यों? क्योंकि कृष्ण का एक नेचर है या नाम है नव नवाय माना। नव नवाय माना मीन्स कृष्ण हमेशा नूतन है, नए हैं और हमेशा बदलते हैं, बढ़ते हैं भगवान। इसलिए श्रीमती राधा रानी को उनकी सेवा करना है तो कृष्ण के साथ मैच करनी होगी। हाँ उनके बारे में अधिक जानना होगा और ऐसे ऐसे चीजें, ऐसे स्किल आदि गेन करने होंगे कि जिसके द्वारा वो कृष्ण की सेवा कर सकती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि राधा रानी भी जो कृष्ण की टॉप मोस्ट डिवोटी है वो भी क्या करती है? रोज सीखती है भगवान की सेवा करने के लिए। यदि हमें थोड़ा सा भी ये भावना आती है कि मुझे अभी बेटर हो गया हूं, मैं कुछ जान गया हूं, तो हमें तुरंत किसका स्मरण करना चाहिए? राधा रानी का। अरे राधा रानी सब कुछ सीखने के लिए लगी है तो मैं कहां, कौन सी खेत की मूली? हाँ मुझे तो प्रतिदिन सीखना है, तो किन से सीखना चाहिए? भक्तों से सीखना है, प्रभुपाद से, आचार्यों से, और जो उन्नत वैष्णव भक्त है उनसे हमें निरंतर सीखना चाहिए। तो भागवतम तो भरा पड़ा है, ऐसे ऐसे उदाहरण है, ऐसे ऐसी चीजें हैं कि जहां श्रीमद् भागवतम में अलग अलग भक्त कई सारे भक्तों से सीखते रहते हैं। हाँ तो इस प्रकार से हमें कभी आलसी नहीं होना चाहिए सीखने के लिए। तो ऐसे भगवान वामन देव का वर्णन श्रीमद् भागवतम में प्राप्त होता है बलि महाराज के साथ, और विशेष उनका लीला है जिसमें शिक्षाओं का खजाना है। हम तो कुछ चीजें सीखने का प्रयास करेंगे जो बहुत सरल हो और हमारे लिए क्या हो, प्रैक्टिकल हो, हाँ जिससे हम कुछ चीजें अपने जीवन में डाल सकते हैं। और भगवान वामन देव की लीला का हम स्मरण निरंतर रख सकते हैं उनके जो भक्त हैं बलि उनके साथ। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, हाँ भागवतम किसके बीच में संवाद है? श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज और शुक्रदेव गोस्वामी, भगवद गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन या संजय और धृतराष्ट्र, तो सारे शास्त्रों को उठाएंगे तो उसमें केवल संवाद ही है, संवाद ही भरे पड़े हैं। भागवतम में तो बहुत सारे संवाद हैं। तो कोई भी ग्रंथ ले लो, चाहे वो महाभारत रामायण कोई भी बुक उठाओ, वो क्या है? संवाद से भरा पड़ा है। और संवाद क्या है? उसमें से एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है? उत्तर देता है। मींस एक बोलता है दूसरा सुनता है। इसी को क्या कहा गया है? श्रवणम कीर्तनम। तो ये श्रवणम कीर्तनम बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की ओर अग्रसर रहना है, कृष्ण की चेतना को बनाए रखना है, तो हमें सुनना और भगवान के बारे में बोलना ये परम आवश्यक है, जिसके द्वारा हमारी जो चेतना है सदैव कृष्ण में लगी रहती है और हम भक्तिमय पाथ में सदैव सावधान रहते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं। इसलिए हमें निरंतर सुनना चाहिए और जो सुना है हमने वो जाकर क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए, उसको कीर्तनम कहते हैं। एक सबसे अच्छा उपाय है, कोई यदि पूछता है कि कैसे भगवान का स्मरण बढ़ाया जा सकता है, कैसे अधिक भगवान का स्मरण करें, उसके लिए बेस्ट चीज है जो भी हमने सुना है वो जाकर क्या करो? दूसरे को सुनाओ। जो भी हमने पढ़ा है वो जाकर दूसरे को सुनाओ, जिसके द्वारा आपका कृष्ण स्मरण क्या होता है? बढ़ता है और आप आनंद की अनुभूति करते हो। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में संवाद श्रीमद् भागवतम में आता है, जिसमें दोनों महान महान भक्त हैं, अपने अपने लेवल में क्या है, टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, बेस्ट स्पीकर हैं कृष्ण कथा का शुकदेव गोस्वामी, और बेस्ट श्रोता है कौन है, परीक्षित महाराज। हमें इस जगत में सबसे बड़ा तपस्या क्या है, सुनना। कौन सी बड़ी तपस्या है, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। बच्चा जन्म लेता है, बचपन से किसी की नहीं सुनना चाहता, माँ बाप पिता किसी की नहीं, हर कोई सुनाने में लगा पड़ा है। हाँ, इसलिए घर में पत्नी भी नहीं सुनना चाहती, पति भी नहीं सुनना चाहता। और जब अब देखो माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं तो बच्चे और बहू सुनना नहीं चाहते। मतलब ये जगत में बहुत कठिन है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वास्तव में भगवान की ओर जाने के लिए एक ही उपाय है जो सबसे सरल है, वो क्या है, श्रवण। शुद्ध इक्षित पतः, श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण तो एक रास्ते से व्यक्ति के हृदय में घुसते हैं, और वो कौन सा है, कानों के माध्यम से। कानों के माध्यम से कृष्ण हृदय में जाते हैं, इसलिए सुनने के लिए है एक व्यक्ति को हमेशा तत्पर होना चाहिए, क्योंकि सुनने की इतनी महिमा है कि जिसका वर्णन करना असंभव है। कितने कितने महान महान भक्त थे जिन्होंने भगवान के बारे में सुना और देखा भगवान के प्रति उनके हृदय में प्रेम की जो प्रगाढ़ भावना है वो जागृत हो गई। तो ऐसे परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे, 3 दिन हो गए थे लगभग, और ये शुकदेव गोस्वामी बोलते जा रहे थे, तो कुछ शॉर्टकट में बोला उन्होंने इस लीला को। तो परीक्षित महाराज कहते शुकदेव गोस्वामी थोड़ा रुको, आप बड़े तेजी से बोलते जा रहे हो, आप कभी कभी बड़ा शॉर्टकट मारते हो। जैसे कृष्ण लीला है श्रीमद् भागवतम में, उन्होंने पूरा कृष्ण लीला दशम स्कंद जो है वो केवल 2 श्लोकों में सुना दिया, पूरा कृष्ण इस जगत में प्रकट भी करा दिया, सारे वृंदावन की लीला भी बोल दी, और इस जगत से भगवान को भेज दिया अपने लोग। कितने श्लोका में, 2, वो खत्म हो गए दशम स्कंद। परीक्षित महाराज कहते ये नहीं, ऐसे मत करो, मैं कैसे सुनना चाहता हूं भगवान के बारे में, विस्तार से, गो इन डिटेल्स, डिटेल में जाओ भगवान के बारे में। हमें डिटेल सुनने के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए, और वो लालसा हमारे हृदय में होनी चाहिए। तो इनको ये प्रश्न आया परीक्षित महाराज को, ये जो भगवान है जो षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, सारा ऐश्वर्य सारा धन उनके पास है, लेकिन एक निर्धन गरीब याचक के भांति वो भगवान ये बलि महाराज के पास जाते भिक्षा मांगने के लिए। हाँ, ऐसा क्यों, क्या उनके ऊपर आग पड़े, क्यों भगवान को भिक्षा का कटोरा हाथ में लेना पड़ा और भिक्षा पात्र लेना पड़ा, और वो गए बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने के लिए। चलो उन्होंने तो भिक्षा दे भी दी, मुंह मांगी चीज दे दी, लेकिन फिर भी ये भगवान, ये जो वामन है, इन्होंने उनको बांधा और घसीटा, कि इतना तंग क्यों किया। आप जानते बलि को बहुत कष्ट दिया है भगवान ने, तो उन्होंने कहा क्यों ऐसा किया। हाँ, मैं बड़ा उत्सुक हूं ये सुनने के लिए। तो शुकदेव गोस्वामी देखते हैं परीक्षित महाराज के हृदय में तो सुनने के लिए इतनी बड़ी लालसा है। एक्चुअली ये वैसे ही है जब श्रोता लालायित होता है, हाँ, तो वक्ता के हृदय में भगवान क्या करते हैं, भगवत चर्चा स्फुरित कराते हैं, जिसके द्वारा जो वक्ता है भगवान का गुणगान करता है अधिक मात्रा में। जैसे गाय है, गाय को दूध देने के लिए बछड़े को छोड़ते हैं ना, बछड़ा थोड़ा सा मुंह ऐसे लगाता है तो गाय का सारा दूध निकलने लगता है, वैसे ही है। हाँ, तो जो शुकदेव गोस्वामी थे उनकी तुलना की गई है, हाँ, एक स्पॉन्ज क्या कहते हैं उसको, रुई, जो पानी में डालो तो पानी को क्या, स्पंज, हाँ, तो शुकदेव गोस्वामी ऐसे वो स्पंज है जो भरे हुए हैं पानी से या कृष्ण कथा से, और बीच बीच में क्वेश्चन पूछ के परीक्षित महाराज टच करते थे ऐसा, तो पानी क्या करने लगता था, धार गिरने लगती थी या कृष्ण कथा उनके हृदय से या उनके मुख से निकलना शुरू होती थी, निकल जाती थी। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी इस लीला का वर्णन करते हैं, तो हम संक्षिप्त में उस लीला का वर्णन करेंगे। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि एक ऐसा समय था जिस समय ये जो आसुर और देवताओं के बीच में बहुत घनघोर युद्ध हुआ, ये लड़ाई हमेशा चालू है। इस संसार में देवता हमेशा है और आसुर हमेशा है, ये दोनों प्रकार के। तो जब भी महान संग्राम हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें आसुरों का नेतृत्व बलि महाराज कर रहे थे और देवताओं का नेतृत्व कौन, इंद्र है जो स्वर्ग के निवासी हैं। तो बलि महाराज उस युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है और बलि महाराज की जब मृत्यु हुई तो आसुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके पास विशेष विद्या थी जिसके द्वारा वो मृत व्यक्ति को भी क्या करते थे, जीवित करते थे। ऐसे थे वो पावरफुल गुरु थे शुक्राचार्य। तो ऐसे शुक्राचार्य ने क्या किया, उस युद्ध के बीच में या समापन में बलि महाराज को जीवित किया और बलि महाराज ने देखा कि मुझे तो मेरा लाइफ, मेरा प्राण, मेरा जीवन वापस मिला है। बलि महाराज शुक्राचार्य के प्रति बहुत कृतज्ञ हो गए, ग्रेटफुल हो गए। इस संसार में कोई हमारे लिए कुछ करता है छोटा सा कार्य तो हम कृतज्ञ हो जाते हैं, यहाँ तो उनको जीवन दान मिला था। तो बलि महाराज तो सबको समर्पित करके उनकी सेवा में लगे शुक्राचार्य के, और शुक्राचार्य को अपना गुरु बना लिया उन्होंने और उनसे शिक्षा और सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया। तो देखा शुक्राचार्य ने सोचा मेरा ये जो शिष्य है ये इतना धनाढ्य नहीं रहा अभी, क्योंकि देवताओं ने सारा ऐश्वर्य आदि छीन लिया, तो इनको लगा ये मेरा शिष्य धनवान होना चाहिए जिसके द्वारा मुझे भी क्या आएगा, धन आएगा। ये तो भौतिक भोगवादी जो गुरु है उसकी ये मेंटालिटी है, शिष्यों का इस्तेमाल किस लिए, धन अर्जन करने के लिए और अपनी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे ये शुक्राचार्य थे जिन्होंने बलि महाराज को लगाया एक विशेष यज्ञ करने के लिए, विश्वजीत यज्ञ। विश्वजीत मीन्स वो यज्ञ करने से सारे विश्व को क्या कर सकते हो, आप जीत सकते हो। तो ऐसा विश्वजीत यज्ञ करने में उनको लगा दिया और वो यज्ञ में आहुति आदि डालने लगे घी आदि के। तो उस यज्ञ से कुछ ही दिनों में या कुछ ही क्षणों में बहुत दिव्य चीजें बाहर आने लगी। सबसे पहले एक दिव्य रथ उस यज्ञ से बाहर निकला, फिर चार येलो कलर के पीले वर्ण के घोड़े निकले, धनुष निकला, दो तरकस निकले, ऐसी दिव्य चीजें निकली, कवच निकला। और उन चीजों को जब बलि महाराज ने देखा, बलि महाराज ने उसको स्वीकार किया और वो कवच आदि धारण किया, वो धनुष आदि स्वीकारा। और बलि महाराज को उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने कहा कि तुम्हें युद्ध करना है, अभी जीतना है, सारे त्रिभुवन को जीतना है। तो उन्होंने क्या किया, बलि महाराज को एक शंख दिया। तो बलि महाराज किसके पोते हैं, प्रहलाद के। प्रहलाद महाराज के पुत्र है विरोचन और विरोचन के पुत्र कौन है, बलि महाराज। तो प्रहलाद महाराज आए तुरंत, देखा कि मेरा पुत्र इतना महान है जिसके लिए इतनी दिव्य चीजें निकली है, तो उन्होंने एक माला उनको पहनाई जाकर, ऐसे फूलों की माला जो कभी मुरझाने वाले नहीं थे, उनको वो माला पहनाई। और शुक्राचार्य ने कहा कि आप अभी क्या करो, युद्ध के लिए निकल पड़ो। तो इन्होंने उनको प्रणाम किया, प्रहलाद को, शुक्राचार्य को, उनकी प्रदक्षिणा की और अपने आसुरी सेना को लेकर इंद्र को, देवताओं को पराजित करने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण किया। तो स्वर्ग में, स्वर्ग की राजधानी कौन सी है, अमरावती। इंद्र जहां निवास करते हैं उसका नाम अमरावती है। तो ऐसे अमरावती पर आक्रमण किया, उस सिटी के बाहर ही खड़े थे बलि महाराज और वो सेना के साथ, और इतना तेज बलि के शरीर से निकल रहा था मानो साक्षात फायर,
अग्निदेव वहां प्रकट हो गए हो, तो ये इंद्र अपने महल में था, उसने देखा शहर के बाहर इतना बड़ा तेज कहां से निकल रहा है, तेज पुंज, तो ये डर गया इंद्र। और इंद्र तुरंत अपने गुरु के पास जाता है, कौन गुरु है देवताओं के, बृहस्पति। बृहस्पति के पास जाता है और बृहस्पति से पूछता है, डरा हुआ था, और उनके पास जाकर पूछता है कि ये क्या है, कौन है बाहर हमारे इस शहर के बाहर, अमरावती के बाहर। और वास्तव में एक ना एक दिन व्यक्ति किसी ना किसी साधु की क्या करता है, शरण ग्रहण करता है। भौतिक जीवन में भी देखो, व्यक्ति को कोई बीमारी आ जाती है, वो लोग पूरे हॉस्पिटल सब कुछ दवाई डॉक्टर्स कर करके फिर ढूंढते हैं कौन सा बाबा है जो क्या देगा, कुछ भस्म देगा जिससे बीमारी दूर हो जाएगी, या कुछ मंत्र देगा। अल्टीमेटली व्यक्ति ढूंढता है किसी साधु को जाकर जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए। हाँ, तो इसी प्रकार से बृहस्पति के पास गए इतने बड़े राजा। और बृहस्पति तो बहुत तीक्ष्ण थे, बहुत बुद्धिमान थे। बृहस्पति ने कहा कि ये साक्षात कौन है, ये तो बलि है, बलि महाराज वहां खड़े हैं, जिनके शरीर से इतना तेज निकल रहा है, उनकी आंखें आग के समान इतनी लाल हो गई है, मानो सबको अपने चपेट में ले सकती है, सारे स्वर्ग को। तो ये डर के इंद्र पूछता है, इंद्र को डर किस चीज का था, अपनी पोजीशन का, उसका इंद्र पर चला जाएगा, ऐश्वर्य चला जाएगा, और उनका एक डेजिग्नेशन है, एक पोजीशन है जिसको कहते हैं शतक्रतु। शतक्रतु मींस 100 अश्वमेध यज्ञ इंद्र ने किया है, इसलिए उनको ये टाइटल है। तो इस संसार में भी हर एक व्यक्ति भयभीत है, अपने अपने पोजीशन को क्या करते हैं, हम बनाए रखना चाहते हैं हर स्थिति में, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। तो उसी प्रकार से ये डरे हुए थे। तो बृहस्पति ने कहा, ये इतना तेजवान और बलशाली है, इसका केवल एक में वो कारण है। इंद्र ने पूछा क्या कारण है, ये इतना पावरफुल हो गया है। बृहस्पति कहते एक कारण है। हाँ, तो इससे हम पहला लेसन नंबर 1 क्या है, पहली शिक्षा, तो बृहस्पति कहते हैं कि इस व्यक्ति ने बलि ने अपने आध्यात्मिक गुरु की श्रद्धा के साथ सेवा की है, जिसके कारण उसके पास अभी क्या है, इतना बल और इतना तेज आदि है। तो इसलिए वहां कहते हैं, पहली ये शिक्षा हमें प्राप्त होती है कि व्यक्ति आध्यात्मिक बल अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। हाँ, किसके माध्यम से, यदि वो अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है, तो वो बहुत स्पिरिचुअल बल प्राप्त कर सकता है, जिसके द्वारा कृष्ण प्राप्ति उसके लिए सरल है। भगवान कृष्ण को समझना, भगवान कृष्ण की सेवा करना, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना हमारे भौतिक गुणों पर निर्भर नहीं है, या भौतिक बल योग्यता नहीं है। कोई कितना हट्टा कट्टा तगड़ा है, वो जिम जाता है, वो मायने नहीं रखता। कोई कितना रूपवान है, धनवान है, वो मायने नहीं रखता। भगवान को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद का जो बल है वो काफी है, इनफ है, और उसी से ही संभव है। इसलिए वो कहते हैं स्पिरिचुअल बल किसी भक्त को प्राप्त होता है तब जब वो आध्यात्मिक गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है और वो श्रद्धा के साथ निष्ठा के साथ उनकी सेवा करता है। जैसे हम श्रीमद् भागवत प्रभुपाद को देखो, श्रील प्रभुपाद क्या था उनके पास, एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति कहां तक दौड़ सकता है, क्या क्या कर सकता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद के पास एक बल था। क्या बल था, वो उनका फेथ था अपने आध्यात्मिक गुरु के वचनों पर, और उनकी सेवा के प्रति वो समर्पित थे, श्रद्धावान थे। तो इसके कारण प्रभुपाद इतने बूढ़े हो गए थे, 70 साल की आयु में उनके पास इतना बल कहां से आ गया कि पूरा महासागर को लांघ कर विदेश गए और हजारों की संख्या में लोगों को कृष्ण भक्त बनाया, इतना ट्रैवल किया, ग्रंथ लिखे, मंदिर बनाए। हाँ, जैसे वो सार्वभौम प्रभु कहते हैं ना कि प्रभुपाद ने रात रात जग जग के सोए नहीं और इतने ग्रंथ लिख दिए। लेकिन आजकल की पीढ़ी है जो भक्त है, पनीर खाके भी वो पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसी उनकी स्थिति है। कहते प्रभुपाद ने इतनी मेहनत की अपने ओल्ड एज में, लेकिन आजकल के देखो भक्तों को जो इतना सुंदर सुंदर भोजन खाते हैं लेकिन प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ नहीं पाते। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है भगवान कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और जो सुदामा है वो किनकी सेवा में नियुक्त थे, सांदीपनि मुनि के। तो सांदीपनि मुनि की सेवा उन्होंने की, लकड़ लाने के लिए उनको भेजा गया। वहां इतना बारिश सब कुछ आ रहा था, तूफान हो रहा था, तो लेकिन फिर भी वो सेवा में डटे रहे, जिसके द्वारा दूसरे दिन सांदीपनि मुनि लिए ढूंढा, अरे इतना समर्पण मेरी सेवा के लिए, तो उन्होंने उनको ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया कि जो भी नॉलेज है वो आप ये जीवन में क्या अगले जीवन में नहीं भूलोगे। अभी भगवान को क्या आशीर्वाद की आवश्यकता है, लेकिन भगवान ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे सेवा और समर्पण की भावना होनी चाहिए अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति, जिसके द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक बल प्राप्त करता है और उसमें भौतिक योग्यता ना भी हो, लेकिन जो गुरु को प्रसन्न करता है, जिसके द्वारा यश प्रसादात भगवत प्रसाद इतना बल आता है कि वो मिरेकल, मतलब ऐसी ऐसी सेवाएं करता है जिसने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ये योग्य हो जाता है। जैसे उदाहरण आता है, हाँ तीन तीन चूहे थे, कितने चूहे थे, तीन चूहे, और तीन चूहे आपस में मिलकर मीटिंग कर रहे थे और आपस में जब बात कर रहे थे एक दूसरे को बता रहा था, मैं बताता हूँ कितना कैपेसिटी है मुझमें काम करने का। इस संसार में भी ऐसे होता है, हर कोई व्यक्ति आपने जो बढ़ाई है वो बताना चाहता है। जब आपस में मिलते हैं तो पहला चूहा कहता है, देखो ये मानव है ना, मानव जानते हो, मनुष्य, कहते ये लोग हमेशा हमें मारने में तुले रहते हैं, हम का दिखाई दिए तो इनको रहा नहीं जाता, इनका ब्लड ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे व्यक्ति कब चूहे को पकड़े और मारे। तो कहते देखो इन मनुष्यों ने मुझे मारने के लिए पकोड़े में 500 ग्राम जहर मिला दिया था, कितना ग्राम, 500 ग्राम जहर, लेकिन फिर भी उस पकोड़े को मैंने खा लिया, डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन वो जहर का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। देखो कितना पावरफुल हूं मैं। अभी एक चूहे ने बोला तो दूसरा अपना कॉलर ऐसे ऊपर करके कहता, मैं भी सुनाता हूँ, इतना ही क्या, पिछले हफ्ते की बात है, एक मनुष्य ने मुझे, मैं घूम रहा था, उन्होंने वो रैट जो पिंजरा है ट्रैप, वो पिंजरा पिंजरे में मुझे फंसा दिया और मैं अंदर फंस गया था। तो जब फिर मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने अपने दांतों का इस्तेमाल किया, वो जो पिंजरा था उसको पूरा चबा चबा के पाउडर बना दिया और उनका देखो मेरे दांत कितने पावरफुल है तो मैं कितना पावरफुल हो सकता हूँ। तो वो दूसरा हैरान हो गया, अच्छा दांतों से पाउडर कर दिया। तीसरा कहता मेरी सुनो, अभी तीसरा खड़ा हो गया चूहा, कहते आप दोनों की तो बहुत सिंपल कहानी है, इतनी कैपेसिटी आप नहीं रखते, लेकिन मेरी सुनो। तीसरा कहते देखो देखो दूर वहां वो बिल्ली नजर आ रही ना, बिल्ली, अभी उसके पास जाता हूं और उसको तंग करके आता आप सबके सामने। हाँ तो ऐसा बोलने का पावर उसके पास क्यों था। तो शास्त्र कहते हैं अभी इस चूहे में क्या शक्ति है कि वो किसको चैलेंज करे, किसको, बिल्ली को चैलेंज कर सकता है चूहा नहीं। हाँ तो उसी प्रकार से एक जीव है, एक व्यक्ति है, चाहे एक शिष्य है, वो क्या माया के अगेंस्ट हाँ कार्य कर सकता है। तो शास्त्र कहते हैं बिल्ली की तुलना माया से की गई है और एक जीव या व्यक्ति या शिष्य की तुलना वो चूहे से की है, लेकिन प्रभुपाद जैसे जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनके जो शिष्य थे जिन्होंने प्रभुपाद को सेवा से इतना प्रसन्न किया कि प्रभुपाद के ऐसे छोटे छोटे भक्त भी वो दूर दूर देशों में चले गए अकेले अकेले और जाकर किसको चैलेंज करके आ गए, माया को, माया के जगत में जाकर वहां मंदिर बनाए, प्रचार किया, हरिनाम भक्त बना लिए। तो ऐसा कैपेसिटी आ जाता है, बल आ जाता है चूहे जैसे भक्त के अंदर, किसकी कृपा से? आध्यात्मिक गुरु की कृपा से। तो उसी प्रकार से शास्त्र कहते, प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भावना हम अपने अपने प्रयास से अर्जित नहीं कर सकते। हम जब आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करके और सेवा करके, तो कृष्ण भावना हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सुना इंद्र ने, अच्छा बृहस्पति ने कहा यही उसकी ये योग्यता है बलि की, उसने अपने गुरु को प्रसन्न किया, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है। हाँ, गुरु वैष्णव उनको प्रसन्न करना, जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक जीवन में बलशाली होते हैं। अन्यथा एक माला जप करना हमारे लिए क्या होता है? बहुत कठिन। सुबह जब हो जाती है ना, ये कितना ग्राम है, ये लगता है कि 100 किलो की बेड़ बैग है। वो उठने के, उसको पकड़ने के लिए पहले 1000 बार सोचते हैं। हम टांग के रखी हो तो सोचते उतारो कि नहीं उतारो, पहले ये काम करता तब उतारता हूँ, उसके बाद उतारता हूँ, फिर हाथ उतार के गले में टांग देते हैं, फिर हाथ डालो कि नहीं डालो। इसके लिए बल चाहिए। और वो बल कैसे आता है? जब हम गुरु वैष्णव आदि की आज्ञाओं का पालन करते हैं और सरलता से सेवा में लगते हैं तो बलशाली हो जाते हैं। तो ऐसे इंद्र ने जब ये पूछा था तो फिर उन्होंने ये बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा अभी समय उसका साथ दे रहा है। बृहस्पति कह रहे किसका साथ समय दे रहा है? हम कहते आजकल मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है। तो अभी इंद्र का, देवताओं का समय सही में अच्छा नहीं चल रहा था। हमारे जीवन में भी ये समय कभी हमारे साथ रहता है, कभी समय हमसे दूर जाता है। क्योंकि टाइम कौन है? कृष्ण है। गीता में भगवान कहते टाइम मैं हूं। इसलिए भगवान जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में थे तो भगवान कहते हैं कालस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, अर्जुन काल के रूप में मैं यहाँ आया हूं कि जितने लोग देख रहे हो ना, इनका क्षय करने के लिए मैं यहाँ, मेरा आगमन हुआ है। तो उस प्रकार से इंद्र को बृहस्पति कहते टाइम हम लोगों के साथ है, आप लोग खाली करो अपना ये स्वर्ग, अभी रूप बदलो, जाओ अभी किसी, जाओ जंगलों में जाओ, जहां मर्जी जाओ, अभी आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। और वास्तव में वैसे हुआ, पूरा स्वर्ग खाली हो गया, सारे देवता धूम दबा के भाग गए। और वहां किसका राज्य हो गया? कौन आ गया वहां? बलि महाराज। बलि महाराज अभी आसुर इतने पावरफुल हो गए, वो भृगुवंशी भृगुवंशज जो ब्राह्मणाज हैं शुक्राचार्य आदि उनकी सेवा में लगे थे। इस प्रकार से वो आ गए, उन्होंने उस सारे त्रिलोक का राज्य संभाला बलि महाराज ने। फिर शुक्राचार्य ने कहा कि बलि महाराज को कहा कि आपको एक यज्ञ करना चाहिए। और कौन सा यज्ञ करना चाहिए? अश्वमेध यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ करने चाहिए। तो नर्मदा नदी के तट पर ऋदुचच्छ नाम का उत्तर तट पर जो स्थान है, वहां वो यज्ञ करने के लिए बैठ जाते हैं। और यहाँ जब देवताओं का खाली हो गए स्वर्ग से, तो देवताओं की माता कौन है? आदिति है, आदित्य। दैत्यों की माता दीति, दीति से सारे असुर जन्मे, आदित्य से सारे देवताओं का जन्म होता है। तो माँ को कभी अच्छा लगता है कि बच्चों के बुरे दिन आ जाए, खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, जंगलों में घूम रहे हैं। हाँ, तो आदित्य बहुत दुखी हो गए, विलाप करने लगी, रोने लगी। और वो कहने लगी कोई मेरे जीवन में रक्षक नहीं बचा। वो अपने आश्रम में बैठ कर रो रही थी। उनके जो पति हैं उनका नाम क्या था? कश्यप मुनि। कश्यप मुनि कभी कभी घर आते थे, वो हमेशा ध्यान जब तक में लगे रहते थे, कभी बीच में आ जाते थे कई महीनों के दिन के बाद। और आके देखा, अपने पत्नी को देखा, चेहरा देखते ही बॉडी लैंग्वेज से समझ गए कि आज इसका मन क्या है, दुखी है। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, हे आदित्य तुम्हारे मन और चेहरे को देख के लगता है कि बहुत बड़ा दुख तुम्हारे हृदय में है। हाँ, तो वो बोलती है, हाँ वो दुख बोलती है कि मुझे क्या है, हाँ कुछ ऐसा वर दो, कुछ ऐसा कार्य करो जिसके द्वारा ये जो आसुर है उनका विनाश हो जाए और मेरे जो पुत्र देवता है उनको वापस राज्य प्राप्त हो। तो ये हंसने लगे। कश्यप कहने लगे, अहो हाँ देव माया, है, देखिए कैसे भगवान की माया है। मैं इतना महान व्यक्ति हूँ और इतने तो महान श्री होकर भी तुम भी भौतिक आसक्ति में फंस गई हो। इस संसार में सबको अपने पुत्र और पुत्रियों के प्रति अटैचमेंट है, इतने आसक्त है अपने बेटे बेटियों में कि जो मतलब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, मरने लगता है, तभी भी किसी की चिंता करता है, बेटे की, उसके पौत्रों की, कितने लोगों की चिंता करता है। तो कहते भगवान की माया देखो कितनी क्रूर है, तुम्हारे ऊपर भी उस माया का प्रभाव हो गया कि तुम भी अपने संतानों के प्रति इतनी आसक्ति या इतने आसक्त हो गए हो। तो फिर उन्होंने ना बहुत बड़ा प्रवचन दिया, वो लंबे कई श्लोकों में प्रवचन दिया जिसमें बताया कि ये जगत अशाश्वत है, दुखालयम है, बहुत सारा उपदेश दिया। सारा उपदेश देने के बाद फिर से पूरा प्रवचन सुनने के बाद वो फिर से रोती है और वो कहती है कि मुझे तो मेरे पुत्रों का राज्य वापस चाहिए जो वैसे ही है। पूरा रामायण सुनने के बाद क्या पूछता है व्यक्ति, सीता राम की कौन थी? अरे ऐसे अर्जुन के साथ भी हुआ था, पूरा भगवत गीता सुना अर्जुन ने। और फिर जब उनके पुत्रों की मृत्यु हुई थी, कौन थे उनके पुत्र? अभिमन्यु। अभिमन्यु की जो मृत्यु हो गई तो वहां ये अर्जुन जाकर जोर जोर से रोने लगे। अर्जुन जोर जोर से रोने लगे और भगवान को कहते हैं, अरे भगवान भी जाकर जोर से रोने लगे। अर्जुन कहते भगवान मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि मैं रो रहा हूं, मेरा बेटा मरा है, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? वो कहते मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुम्हें पूरा गीता सुनाने के बाद भी तुम फिर भी तुम्हारी जो आसक्ति है कभी कभी लगता है कि वैसे ही है। हाँ तो आज भगवान के लिए इसलिए रो रहा हूं। तो वैसी स्थिति इसके साथ थी। तो इन्होंने सोचा, कश्यप ने सोचा अपने पत्नी को क्या उपदेश दो अभी, तो देखा इसका लेवल क्या है, तो उसके लेवल के अनुसार उपदेश दिया। तो लेसन नंबर टू, जो गुरु है वो शिष्य का लेवल देखकर क्या करते हैं, उपदेश प्रदान करते हैं ताकि वो बेचारा डाइजेस्ट करे या धीरे धीरे उन्नत हो जाए। नहीं तो ऐसा उपदेश दो कि शिष्य आते ही क्या हो जाए, भाग जाए, दूसरी बार क्लास में दिखाई ना दे। तो वो चीज फिर उन्होंने पयोव्रत दिया। उन्होंने कहा सारी समस्याओं का समाधान भक्ति है। एक लाइन में बोला, इसके लिए तुम्हें पयोव्रत करो, मीन्स दूध पीकर एक व्रत होता है 15 दिन का, वो करो और भगवान की आराधना करो, उनके नामों का जप करो। तो ये आदिति करने लगी, हाँ भगवान के नामों का जप आदि और दूध पीकर रहने लगे। तो फिर कुछ समय के बाद भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते आदिति के सामने। और भगवान जब प्रकट हो गए, आदिति कांपने लगी। भगवान चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हो गए, आदिति कांपने लगी। भगवान को देखते सोच उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। हाँ तो तुरंत भगवान को दंडवत करती है और भगवान उनको कहते हैं कि आदिति तुम्हारी ये जो भक्ति की भावना और ये व्रत आदि है जिसके द्वारा मैं संतुष्ट हो गया हूँ, और मैं तुम्हारे पुत्र रूप में क्या करूंगा, प्रकट होऊंगा। बल्कि इससे पहले जब ये इंद्र ने बृहस्पति को पूछा था कि इनके पास इतना पावरफुल कैसे हैं ये बलि, तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने गुरु वैष्णव की सेवा की है। तो फिर इंद्र ने पूछा क्या ऐसा समय कब आएगा जब इनका विनाश हो जाए? तो बृहस्पति कहते वो भी समय आने वाला है इनके जीवन में बलि महाराज के। इसलिए चाणक्य पंडित कहते ना कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है, व्याधिना कौन पीड़िता, कौन ऐसा व्यक्ति संसार में जिसके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी ना हो, कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति के शरीर में है। और वो कहते हैं कष्ट सौख्य निरंतर, कौन ऐसा व्यक्ति संसार में जो हमेशा हमेशा के लिए सुखी है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है कि थोड़े दिन के लिए सुख है फिर दुख है, सुख के लिए चलता रहता है जीवन में। तो जब ये बृहस्पति को पूछा था तो बृहस्पति ने बोला कि इनका भी ये दिन चले जाने वाले बलि के, क्यों? क्योंकि इनसे एक बड़ी घटना घटित होगी इनके साथ। क्या कि ये क्या करेंगे, अपमानेन इनके द्वारा वैष्णवों का या ब्राह्मणों का गुरु का क्या होगा, अपमान होगा, अनादर की भावना होगी, अपराध की भावना आएगी उस बलि के हृदय में। जैसे ही वो अनादर करेगा अपने गुरु का या अपमान आदि करेगा, वैसे ही सब कुछ उसके जीवन से विनष्ट हो जाएगा। लेसन नंबर 3 हाँ, कि जब व्यक्ति के पास में भी बहुत बलशाली है वह, चाहे भक्ति में जीवन में भी क्यों ना हो या ऐश्वर्य आदि भी, जब हमसे आध्यात्मिक गुरु वैष्णव आदि का ब्राह्मण आदि का अपमान अनादर आदि होता है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन से भक्ति एक तो खत्म नष्ट हो जाती है, ऐश्वर्य आदि सब कुछ क्या होता है, विनष्ट होने लगता है। ये महत्वपूर्ण है, ऐसे हजारों उदाहरण शास्त्र में है। जैसे कर्ण के जीवन में देखो, कर्ण परशुराम के पास जाता है, उनको कहता है कि मुझे विद्या आपसे लेनी है, तो परशुराम कहते हैं मैं केवल ब्राह्मणों को विद्या प्रदान करता हूँ। तो उन्होंने तो चेटिंग की, उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, उनसे विद्या ली, सीता सब कुछ। और एक दिन कर्ण की गोद में परशुराम अपना सर रख के विश्राम कर रहे थे, तो उस समय भिक्षु या फिर भ्रमर भ्रमर आकर उनके जो थाए है गोद है उसको काट लेता है, कर्ण के और सारा ब्लड जब खून है बाहर गिरने लगता है, फैलने लगता है। तो जैसे वो ब्लड परशुराम के कपड़ों में लगा, गीले हो गए परशुराम, परशुराम उठे और कहा अरे ये सारा खून तुम यहाँ पानी की जैसा बह रहा है, मुझे लगता है तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता कहाँ, ब्राह्मण को भूख लगती है तो चिल्लाता रहता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कौन से व्यक्ति को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, ब्राह्मण को अपना नाम अपना बनाना है, ब्राह्मण भोजन प्रिया, ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा ये दो प्रिय है, उसको अच्छा प्रसन्न खिलाओ, वो सारे आपके जैसे मंत्र क्या करेगा, उच्चारण करेगा। क्षत्रिय वृत्ति का व्यक्ति है उसको कुछ मैनेजमेंट करने का कार्य दे दो, वो बिल्कुल तत्पर रहेगा उन चीजों में। इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं वैश्य वृत्ति का है उसको कुछ लेन देन के काम में लगा दो, वो छोड़ेगा नहीं वो सेवा। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा ये ब्राह्मण नहीं है, इतनी सहनशीलता तो क्षत्रिय में, तो इन्होंने कहा मैं क्षत्रिय हूं। तो फिर परशुराम ने क्या किया, श्राप दिया, उन्होंने कहा जो विद्या तुमने अर्जन की है जब समय आएगा इस्तेमाल करने का, जब चाहिए होगा वो विद्या, उस समय तुम भूल जाओगे। और वैसे वह कर्ण के जीवन में जब उसको आवश्यक थी वो विद्या युद्ध स्थल में, तो उस समय वो कुछ याद नहीं आ रहा था। तो जब हम अनादर करते हैं, अपमान अपराध की भावना रखते हैं गुरु वैष्णव के भक्तों के प्रति, तो फिर जब समय आएगा हमारे लिए कौन सा समय है, मृत्यु। उस समय क्या स्मरण होना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो हम भूल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्र में प्राप्त होते हैं। तो ऐसे भगवान आदित्य को कहते हैं कि मैं अपने आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, और एक दिन आता है जो ये द्वादशी गई पावन द्वादशी श्रावण मास की विजया द्वादशी भी कहते हैं, उस दिन भगवान वामन देव प्रकट हो जाते हैं। ऐसा कहते कि भगवान प्रकट हो गए हैं तो सबसे पहले चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए, बड़ा रूप था उनका जिसमें उन्होंने पीतांबर धारण किया था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया था, उनको मकर कुंडल थे, सारे आभूषणों से सज्जित थे। और फिर सब लोग प्रार्थना करने लगे तो तुरंत भगवान एक छोटे से बालक बटू वामन, वामन मीन्स छोटा, ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में वो क्या हो गए, प्रकट हो गए। अभी तो चतुर्भुज थे लेकिन समय समय छोटे से प्रकट हो गए वामन एक ब्रह्मचारी के रूप में, बालक ब्रह्मचारी के रूप में। तो फिर भगवान जब प्रकट हो गए वहां, तो सबने उनको कुछ ना कुछ दिया, जैसे सूर्यदेव ने गायत्री उनसे चांद करवाया, और जो चंद्रमा है उन्होंने उनको ब्रह्म दंड दिया, ब्रह्मचारी को दंडा था कि वो चल सके, फिर जो और किसी ने कुबेर ने उनको भिक्षा मांगने के लिए पात्र दे दिया, लेकिन सबसे पहले दक्षिणा किसने दी? भगवती देवी, पार्वती देवी ने दी। तो ऐसे वर्णन आता है क्या क्या चीजें उन्हें प्राप्त हुई, तो सब भागवतम में विस्तार से है। तो ये सब चीजें प्राप्त की उन्होंने, और फिर भगवान का उद्देश्य क्या था? हाँ, देवताओं का जो राज्य है वो क्या करना? वापस उनको प्रदान करना। इसलिए भागवतम की शुरुआत में आता है कि भगवान अवतरित होते हैं, इंद्रादि व्याकुलम लोकम प्रलयन्ति युगे युगे, इंद्र के शत्रुओं का विनाश करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग युगों में। तो ऐसे वामन देव जब ये सारे चीजें उनको प्राप्त हुए और वो छोटे से बालक ब्रह्मचारी के रूप में थे, अपना भिक्षा पात्र लेकर वो निकल पड़े। किसकी ओर निकल पड़े? बलि महाराज की ओर। बलि महाराज नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहे थे, तो उनसे कुछ भिक्षा मांगने के लिए निकले। तो भगवान जब जा रहे थे तो भगवान सोच रहे थे, अरे मैं तो बलि महाराज से कुछ मांगने जा रहा हूं, भिक्षा मांगने जा रहा हूं, लेकिन भिक्षा मांगने जा रहा हूं और मेरे तो राइट साइड में कौन निवास करती है? लक्ष्मी। भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं और स्त्री वत्स का जो चिन्ह है भगवान के राइट साइड में है, भगवान के हमेशा यहाँ लक्ष्मी निवास करती है। तो भगवान ने सोचा मैं उनसे उनका सब कुछ छीनने जा रहा हूं, लेकिन लक्ष्मी साथ है और वो देखेगी तो मैं उनका कुछ भी छीन नहीं सकता। लक्ष्मी जिस पर दृष्टिपात करती है तो उसका ऐश्वर्य बढ़ता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने घरों में केवल लक्ष्मी का फोटो रखते हैं, नारायण को हटा देते हैं, राम को हटा देंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोग रावण के प्रवृत्ति के हैं, उनको सीता चाहिए लेकिन साथ में कौन नहीं चाहिए? राम। उनको लक्ष्मी चाहिए लेकिन नारायण नहीं चाहिए उनको, ऐसे लोग हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से उन्होंने सोचा भी इनके पास तो बलि महाराज के पास तो दोनों जा रहे हैं, लक्ष्मी भी जा रही है नारायण भी जा रहे हैं और भगवान तो छीनने जा रहे हैं। लेकिन जब लक्ष्मी देखेगी तो छीन नहीं सकती, तो सोचती क्या करूं, ये लक्ष्मी को कैसे ढको। तो आप देखो मंदिर में जाते हो पुजारी, अभी भी पुजारी प्रभु थे यहाँ, वो चंदन डालते हैं, ऐसा डालते ना, है ना, इधर का साइड क्या रहता है? खुला रहता है। तो वैसे ये बालक ब्रह्मचारी वामन देव मृग चर्म का वो चंदन ऐसे मेखला कहते हैं उसको, ऐसे डाला हुआ था, इस तरफ था, इस तरफ का खुला था, तो लक्ष्मी यहाँ ओपन थी, वो देख रहे थे। तो यहाँ इसलिए डालते हैं जनेऊ को कवर करते होते हैं ब्राह्मण थे, उसको वो पुजारी या ब्राह्मणस कवर करते हैं। तो फिर भगवान ने सोचा नहीं इसको ढक देता हूं, अभी ये साइड का निकाल के कहां लाता हूं, यहां डालता हूं। तो भगवान ने अपना इधर का चद्दर उतारा, इधर का ढक दिया, इधर का खोला, तो ढका तो लक्ष्मी को ढक दिया ऊपर से कपड़े से। अभी लक्ष्मी सोची, अंदर सोच रही थी लक्ष्मी देवी, वो कहती है कि इतना तेजी से जा रहा है और इतना अरेंजमेंट किसके लिए हो रहा है, इतना कौन से बंदे के लिए इतना सब चेंज कर रहे हैं भगवान। तो लक्ष्मी देवी ने सोची जहां भी पहुंचेंगे ना जरूर उस व्यक्ति को देखूंगा जिसके लिए इतना भगवान एडजस्टमेंट, ऐसे ही शब्द है, एडजस्ट कर रहे भगवान इतना कुछ, अपना वस्त्र भी चेंज कर दिया। लक्ष्मी देवी को आतुरता थी, तो लक्ष्मी देवी और जैसे भगवान गए ना, वहां भगवान पहुंचे उस यज्ञशाला में जहां यज्ञ हो रहा था, इतने तेज निकल रहा था, छोटे से बालक है इतना तेज निकल रहा था, वहां यज्ञशाला में पहुंचे तो सारे ब्राह्मण शुक्राचार्य बलि सब खड़े हो गए और खड़े हो गए भगवान को देखने लगे। देखा कि अरे तो महान छोटा सा ब्राह्मण हमारे यहाँ आया है वास्तव में पवित्र करने के लिए हमारे भूमि को, लेकिन इनको पता नहीं सब कुछ विनाश करने के लिए आया है। इसलिए लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वो देवी देवताओं की आराधना करते हैं, वो सोचते कृष्ण आएंगे तो सब कुछ छीन लेंगे हमारे जीवन से। तो इस प्रकार से बलि महाराज के उस यज्ञशाला में भगवान वामन देव पहुंचे तो बलि महाराज दौड़ के आ गए। बलि महाराज का हृदय बहुत बड़ा हृदय था, भागवत में बहुत उनकी स्तुति है उनके गुणों के बारे में। वो आसुर परिवार में थे लेकिन क्या थे, महान भक्त थे बलि। तो ऐसे बलि उनके पास आए और भगवान को बैठने के लिए आसन दिया और उनके चरण धोने लगे बलि महाराज। बलि महाराज ने कहा कि मेरा कुल पवित्र हो गया कि आप जैसे ब्राह्मण का आगमन यहाँ हुआ है और मुझे लाभ मिला है आपके चरण धोने का और वो जो जल है अपने सर में धारण करने का। और ऐसे सब वार्तालाप कर रहे थे तो भगवान हंसने लगे। तो ये बलि देखो कितना उसके हृदय में बिल्कुल द्वेष की भावना नहीं है, कोई कपटता की भावना नहीं है। तो ऐसे जब भगवान ने सोचा तो बलि महाराज भगवान के मुख को देखने लगे। बलि महाराज मुख को देख के पता चल गया उनको, वो कहते हैं कि हे छोटे ब्राह्मण, मुझे मैं आपके मुख को देख के मुझे लग रहा है कि आप कुछ मांगना चाहते हो, कुछ मांगने की भावना से यहाँ आए हो, हाँ कुछ मांगने के लिए आए हो यहाँ। तो भगवान हंसते हैं, कभी तुमने सही पहचाना, हाँ मैं तो यहाँ कुछ चीज मांगने आया हूँ। तो बलि महाराज कहते हैं आप मांगो, मैं तो त्रिभुवन का स्वामी हूं। हाँ तुम कहने लगे तुम्हें गाय चाहिए, ब्राह्मण हो गाय चाहिए तो मैं गाय दे सकता हूँ, भोजन स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा हो रही है तो स्वादिष्ट भोजन दूंगा, कुछ पीने की इच्छा हो रही है पेय तो पेय दूंगा। वो कहते तुम ब्रह्मचारी हो, सुंदर कन्या से विवाह करने की इच्छा है तो सुंदर कन्या दूंगा। तो ऐसे भागवत में बड़ा लिस्ट दिया है क्या क्या दूंगा। तो भगवान कहते मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक ही चीज मांगने के लिए आया हूँ। कहते मुझे तो केवल तीन पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए? तीन पग भूमि। तो वहां कहते हैं हाँ वहां कहते कि जो जो व्यक्ति है या ब्राह्मण है हाँ वो यदि जो भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट नहीं है और अधिक की आकांक्षा करता है, इच्छा रखता है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति या वो ब्राह्मण पाप कार्य में लिप्त हो जाएगा। ये पक्का है कि जब इसलिए वहां एक लेसन शिक्षा देते हैं कि हर एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। जो भी भगवत कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है अधिक लोभी या लालची नहीं बनना चाहिए। जैसे प्रभुपाद को देखो, प्रभुपाद पूरे विश्व में इतना कुछ था उनके पास, उनके शिष्यों ने उनके लिए हर कंट्री में बड़े बड़े रहने के लिए घर बनाए लेकिन प्रभुपाद किसी में रहने की उनकी इच्छा नहीं थी। कृष्ण की सेवा के लिए पूरे विश्व में भ्रमण करते रहे। वृंदावन जाओगे तो छह गोस्वामियों ने बड़े बड़े मंदिर बनाए कृष्ण के लिए लेकिन वो कहां रहते थे, पेड़ के नीचे, संतुष्ट थे। अभी सुदामा का उदाहरण लो, वो पत्नी ने दंडा लगाया तब वो उधर गए कहा द्वारका, वो संतुष्ट थे कुछ हो या ना हो, और इतना कुछ मिला तभी भी वो क्या थे, संतुष्ट थे। तो उनकी संतुष्टि का कारण क्या था, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा में लगे हुए थे। तो इसलिए वहां भगवान कहते कि हे बलि, हाँ व्यक्ति को जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है ऐसे व्यक्ति को इस संसार का सारा सुख उपभोग दे दो लेकिन फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। हाँ तो बलि कहते मैं तो एक द्वीप दे सकता हूं सात द्वीपों में से। तो वामन देव कहते अरे एक द्वीप मुझे मिलेगा तो मैं कहूंगा सोचूंगा छह क्यों नहीं मिलेंगे मुझे, छह के बारे में सोचता रहूंगा। तो इसलिए वहां बहुत सारी शिक्षाएं भगवान वामन देव देते हैं और फिर वो कहते हैं तो मुझे तो एक ही इच्छा है कि आप मुझे तीन पग भूमि प्रदान कीजिए। अभी वो छोटे से थे बालक, उनके तीन पग कितने बड़े हो सकते हैं। हाँ और तीन पग भूमि जितना सोने के लिए सब स्पेस लगता है मनुष्य को उतना ही है। तो ये आटे रहे, उन्होंने कहा तीन पग भूमि चाहिए। तो उन्होंने कहा वामन देव कहते हैं हाँ मुझे तीन पग भूमि दे दीजिए। तो बलि महाराज तैयार हो गए तीन पग भूमि देने के लिए लेकिन यहाँ एक व्यक्ति को प्रॉब्लम थी। कौन थे वो? शुक्राचार्य। अभी शुक्राचार्य को पता था कि वो कहते थे ये तो इनके घर आदित्य और कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है और ये देवताओं का हित करने के लिए यहाँ आया है और ये तीन पग भूमि का बोल के पूरा तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा। हाँ ये बहुत बहुत कपटी है, ये विष्णु है साक्षात। कौन है? विष्णु है। तो ऐसे जब बोल रहे थे हाँ तो कहते मार दो उसे, शुक्राचार्य कहते हैं। अब ये शुक्राचार्य को उनकी ज्यादा चिंता नहीं है, चिंता किसकी थी? अपनी। शिष्य बेघर हो जाएगा तो मेरा मेंटेनेंस कैसे होगा, मेरा कैसे उपजीविका चलेगा? हाँ तो ऐसा उनको समस्या था, वो भगवान पर निर्भर नहीं थे। तो उन्होंने कहा मार दो उसे और मेरे अवहेलना करोगे तो नरक जाओगे और सबसे वंचित हो जाओगे। तो लेकिन बलि महाराज अपना बहुत सौभाग्य समझ रहे थे। बलि महाराज ने कहा मैं ऐसा व्यक्तियों में से नहीं हूं कि जो कुछ बोलता है कुछ देने के लिए और वो देता नहीं है, या धन के लोभ के कारण मैं मना करो, ऐसे व्यक्तियों में से मैं नहीं हूं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि ये भगवान साक्षात मेरे पास आए हैं। किसके लिए? एक याचक बनके। हाँ हमें तो भोग लगाना है तो घंटी बजानी पड़ती है और फिर भगवान मंत्र बोलते, तब तो सोचते कि भगवान खाएंगे। वृंदावन में कोई घंटी बजाती थी गोपियां? नहीं, वो भगवान स्वयं ही घरों में जाकर मटकी तोड़ तोड़ के खाते थे, क्योंकि उनमें उतना क्या था, प्रेम और समर्पण की भावना थी। तो यहाँ बहुत बड़ा सौभाग्य अपना समझ रहे थे और उन्होंने तीन पग भूमि देने के लिए तत्पर हो गए और उन्होंने अपने गुरु को माना नहीं। मां तो वहां शास्त्र कहते एक एक ऐसा समय है जब गुरु की अवहेलना कर सकते हैं और जब वो कृष्ण की सेवा से हमें रोकता है। हाँ तो वास्तव में गुरु नहीं है, जो भगवान की सेवा से हमें क्या करता है, रोक देता है। तो फिर हाँ जब दान दिया जाता है तो जल हाँ जो याचक है उसके हाथ में डालते तुलसी पत्र के साथ, हाँ तो वो पूर्ति होती है उस दान की। तो इन्होंने जल पात्र उठाया और वो जल ऐसा डालने वाले थे वामन देव के, शुक्राचार्य अभी तक शांत नहीं बैठे, वो छोटा सा रूप बन के जो जल पात्र का छेद था उसके अंदर घुस गए, उसमें जाकर बैठ गए। पानी बाहर आ ही नहीं रहा था क्योंकि तब पूर्ति होगी उसकी दान की जब वो पानी वामन देव के हाथ में गिरेगा। तो भगवान वामन देव ने सोचा कि ये जो शुक्राचार्य महा चालू है, चालू राम है, उन्होंने क्या किया, हाँ जो कुशाग्र रास है उसको लिया और उस छेद में से डाल दिया अंदर वामन देव ने और वहां बैठे हुए शुक्राचार्य थे उनकी सीधा आंख में चला गया और उनकी एक आंख फूट गई और फिर अंधे हो गए। एक ही आंखें, अभी जो शुक्राचार्य है उनकी कितनी आंखें हैं? एक ही है, एक तो फोड़ दी भगवान ने, हाँ उनके पास कोई चक्षु रहा नहीं। तो फिर हाँ वामन देव के हाथ में जल डालते हैं और फिर जैसे जल डाला और भगवान ने कहा कि आप अभी हाँ तीन पग भूमि लीजिए, ऐसे बोला ना तुरंत भगवान विशाल हो गए, इतने बड़े हो गए, पूरा उनका सर आकाश में लगने लगा। और जब ऐसा बड़ा रूप किया ना तब विनम्रता से भगवान कहते बलि अभी तीन पग डालो। हाँ बलि देखते हैं अरे बाकी सब लोग चकित हो गए, आसुर वगैरह तलवार निकालकर मारने के लिए तैयार हो गए। ये तो बोलता पूछे और करता पूछे, एक छोटा सा रूप लेकर आ गया और इतना विशाल, जैसे वो पुत्रा आए थे है ना बड़े सुंदर श्री के समान, ब्रजवासियों को लगा साक्षात लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई है। ऐसे सुंदर श्री को देखा नहीं ब्रजवासियों ने कभी, लेकिन जैसे भगवान ने उनका स्तनपान किया तो वो विकराल भयानक पुतना के रूप में प्रकट हो गए। वैसे भगवान इतने विशाल हो गए, उन्होंने अपने चरण डाले, लेकिन उस समय भी उन्होंने कंप्लेन नहीं की, इन्होंने बलि महाराज ने। तो पहला पग डाला जिसमें पूरे पाताल आदि उन्होंने ले लिए, दूसरा पग डाला तो पृथ्वी से ऊपर जितने लोग आकाश सबको नाप नाप लिया और उनका नाखून ये ब्रह्मांड के फुटबॉल के समान है, नाखून उसको टच होता है फटता है ब्रह्मांड और बाहर कारणार्णव सागर है जिसका जल थोड़ा सा अंदर आता है और वही क्या बनता है जगत में, गंगा। आए वामन देव का नाखून से टच होकर गंगा आती है, वो जल सबसे पहले ब्रह्मा अपने कमंडल में धारण करते हैं। तो ऐसे ले ले दोनों पग, फिर तीसरा पग डालना है तो उनको कहते कहां डालो। अभी बलि महाराज सब समझ गए, बलि महाराज अंदर से बहुत खुश थे। बलि महाराज को फिर क्या किया, वरुण पाश से ऐसे रस्सियों से बांध डाला। वरुण पाश बहुत विकट पाश होता है, बंधन, तो जिसमें बांधा और सबके सामने ऐसे घसीट के खींच खींच के लाया गया, जिसमें उनकी पत्नी देख रही थी, उनकी बहन रत्नवाला देख रही थी, सारे रिलेटिव्स थे, सारे आसुर थे, देवता गण थे, हर कोई देख रहा था। इतना अपमानित किया बलि को, आप सोच नहीं सकते। तो बलि लेकिन अंदर रूप से बिल्कुल आनंदित है, बलि को ये अपमान अपमान नहीं महसूस हो रहा था। बलि सोच रहे थे मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान आप मुझसे क्या ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं। तो हमें जब थोड़ी सी भी सेवा मिलती है तो हमारा परम भाग्य समझना चाहिए, क्योंकि हमें किसने चूज किया है सेवा के लिए, कृष्ण ने। जैसे या वामन देव ने किसने सेवा के लिए चूज किया, किसको, बलि महाराज को। उसी प्रकार से हमें थोड़े भी भगवान की सेवा मिलती है तो हमें कृतज्ञ हो जाना चाहिए कि वास्तव में भगवान ने मुझे क्या किया है, सेवा के लिए चूज किया है, मुझे हाँ वो करना चाहिए। तो उस समय फिर बलि कहते हैं तीसरा पद, भगवान दो चीजें हैं भगवान को कहते, एक है मैं और दूसरा है मेरा, जिसको कहते अहम और दूसरा कहते मम। तो इस संसार में हम इन दोनों चीजों के लिए जीवित है, केवल अहम के लिए और मम के लिए। मम में से इकट्ठा करते रहते हैं, मेरा मेरा मेरा, मेरा घर, मेरी कार, मेरा बिजनेस, मेरी पत्नी, बच्चे, मेरा देश, मेरा जगत, मेरी पृथ्वी, सब कुछ इतना विशाल मेरा, और हम कितने हैं छोटे से मैं। तो भगवान ने तो मेरा सब कुछ ले लिया था उनका, अभी एक चीज बची थी और वो क्या था, मैं, जिसको कहते अहम और उसी को कहते अहंकार, फॉल्स ईगो। ये इतना पावरफुल है, वो सरेंडर नहीं होता किसी से। तो भगवान को कहते भगवान ये जो अहंकार है ना, जो किसी के प्रति आपके प्रति शरणागत होने से रोकता है, ये जो अहम की भावना है, मैं की भावना है, वो यहाँ रहती है। कहाँ रहती है, सर में रहती है। इसलिए हम किसी को झुकते नहीं किसी के सामने, और इसलिए लोग देखो भगवान के पास आते तो कैसे प्रणाम करते हैं, ऐसे भगवान ठीक है हाँ, ऐसे हाथ करके निकल जाते हैं और झुकेंगे नहीं, सर नहीं लगाएंगे। तो वहां भगवान को कहते यहाँ ये अहम जो कहाँ बैठा हुआ है, सर में बैठा है। इसलिए आपका तीसरा पग कहाँ डालना है, तो कहाँ डालो, सर के ऊपर डालो। शेषनी कहते सर के ऊपर डालो, तो भगवान तीसरा पग सर के ऊपर डालते हैं और उस समय उनको भी जीत लेते हैं, अपूर्ण समर्पण, इसको आत्मनिवेदन कहते हैं। किस प्रकार से हम वो स्वीकार करते हैं, पराजित कर देते बलि को, और फिर भगवान क्या करते, जो राज्य स्वर्गलोक उनको वापस देते देवताओं को, और देवता बड़े आनंदित हो जाते, चले जाते हैं आनंदित। हाँ, लेकिन वास्तव में इस पूरी लीला में हम देखेंगे तो असली विजय किसकी हुई है, तो किसकी हुई है, बलि महाराज की। क्या विजय थे भगवान ने, जब इतना कुछ किया, कोई उन्होंने भगवान के प्रति या उनके भक्तों के प्रति ऐसी भावना, द्वेष या कुछ ऐसे रिएक्शन प्रकट नहीं की, बल्कि कृतज्ञता का भाव प्रकट किया, समर्पण का भाव, सेवा की भावना प्रकट की, जो भगवान को बहुत अच्छी लगी। और फिर भगवान ने कहा हे बलि, ये स्वर्ग क्या, तुम्हें स्वर्ग से श्रेष्ठ स्थान में देता हूं। और वो स्थान मिला था केवल लक्ष्मी की दृष्टि से, तो वो स्थान कौन सा दिया उनको, सुतल लोक। स्वर्ग से भी सुंदर है सुतल लोक। भगवान ने कहा वो सुतल लोक तुम्हें दूंगा, तुम प्रहलाद महाराज के साथ जाकर रहो वहां पूरे अपने परिवार आदि के साथ, और मेरा ये सुदर्शन चक्र है हमेशा आपके साथ रहेगा आपकी रक्षा के लिए। और एक आशीर्वाद दिया उनको कि तुम आसुरों के इसमें रहोगे सुतल लोक में, लेकिन कभी भी तुम्हारी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट नहीं होगी, कलुषित नहीं होगी, सदैव मेरा स्मरण बना रहेगा। असत संग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। भगवान ने ये दो 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 लोगों को भी यही आशीर्वाद दिया था, एक थे प्रहलाद महाराज और दूसरे थे ध्रुव महाराज। प्रहलाद के आसुरों के साथ रहते थे, उनको ये आशीर्वाद दिया था। और ध्रुव जिनके पास अमाप धन संपदा थी, जब व्यक्ति के पास धन आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, भौतिक भोग के कार्यों में वो प्रवृत्त होता है, जैसे कुबेर के पुत्र नल कुंवर बने गए। तो वैसे ही भगवान ने यह आशीर्वाद दिया और एक चीज कहे कि हे बलि, तुम सुतर लोक में निवास करोगे, तुम्हारा जो गेट है ना दरवाजा, वहां मैं एक चौकीदार बन के खड़ा रहूंगा हमेशा के लिए। तो इतना बड़ा सोचो, भगवान को थोड़ा सा हम सेवा करते हैं, भगवान इतनी चीज। आप जब कुब्जा ने क्या किया था, चंदन लेके जा रहे थे किसके लिए, कंस के लिए, लेकिन थोड़ा सा चंदन कृष्ण को दे दिया, उसको भगवान ने अपना बना लिया। तो उसी प्रकार से इतना महान समर्पण किया जिसके लिए भगवान ने अपने आप को दे डाला बलि को, और वो चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भगवान खड़े हैं वहां। और यहाँ लक्ष्मी जब वैकुंठ में थे तो देखा, अरे मेरे पति ये लीला करने के लिए गए नीचे, अभी तक आए नहीं वापस। तो लक्ष्मी देवी स्वयं आती है, देखते क्या हो रहा है। तो आए तो देखी मेरे पति तो यहाँ क्या बने हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं। उसका टेंशन नहीं था उन्हें, टेंशन ये था गई वहां बलि महाराज के पास, हाँ कौन सी पत्नी चाहती कि अपने पति को पूरा परेशान देखे हमेशा, हाँ कोई नहीं चाहती। तो लेकिन यहाँ बलि महाराज के पास जाते लक्ष्मी देवी, और लक्ष्मी देवी उनको रिक्वेस्ट करती, लक्ष्मी देवी ऑर्डर दे सकती थी लेकिन रिक्वेस्ट करती क्या कि हे बलि, मुझसे मेरे पति का जो दुख है वो देखा नहीं जाता। अभी क्या दुख था, ये बलि महाराज का महल इतना बड़ा कि उसमें एक दरवाजा नहीं था, इतने बहुत सारे डोर्स थे, चार या कई सारे डोर्स थे। अभी भगवान सिक्योरिटी गार्ड थे तो उनको हमेशा चिंता लगी रहती थी कौन से डोर से बलि बाहर आएंगे। तो दौड़ते रहते थे भगवान, इस गेट से आएंगे, अच्छा इससे नहीं उससे आएंगे, पूरे दिन दौड़ते थे। और भगवान पसीने पसीने, ये लक्ष्मी को पसीने नहीं दिखाई दे, दुखी हो रहे थे कि मेरे पति दौड़ रहे पूरे दिन, इस गेट उस गेट से आएंगे और पसीने पसीने हो रहे हैं। तो बलि को रिक्वेस्ट करते कि बलि, तुम ना एक ही गेट से बाहर आया करो ताकि मेरे पति को प्रॉब्लम ना हो, उनको सेवा का समस्या नहीं है, भक्त की सेवा करें तो ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां एक क्षण में सब कुछ त्रिभुवन का ऐश्वर्य निछावर कर देते हैं कृष्ण की सेवा में। हमें अपना वन रूम किचन का इतना गर्व रहता है कि नहीं, व्यक्ति दिल्ली में थोड़ा कुछ धन आता है या कुछ सेटल होता है तो उसका इतना गर्व, हाँ। लेकिन यहां उसके प्रति आसक्ति नहीं थी, किसको, बलि महाराज को, कृष्ण की सेवा में त्रिभुवन का राज्य ऐसे डाल दिया उन्होंने, समर्पण किया। तो इससे हम यही सीख सकते हैं कि वास्तव में भगवान की जो सेवा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसके पास इस सेवा का मौका है वो वास्तव में जगत में क्या है, सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति है। तो इसलिए कई सारी चीजों से, कई एंगल से इस लीला को हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं कि ये भगवान की जो लीलाएं हैं तो शास्त्र कहते हैं इमिटेशन के लिए नहीं है, इंस्पिरेशन के लिए है, हाँ मतलब प्रेरणा के लिए है, प्रेरणा लेने के लिए, नकल करने के लिए नहीं है कि आप जाएंगे और किसी के तीर पर भूमि मांगेंगे। उससे हमें क्या करना है, प्रेरणा लेनी है, शिक्षा लेनी है। तो इस प्रकार से भगवान का जो प्रेममयी आदान प्रदान है वामन देव को किसके साथ, बलि महाराज के साथ। तो ऐसे कई सारे लीलाओं से, घटनाओं से श्रीमद् भागवतम भरा पड़ा है, कैसे भगवान के भक्तों ने भगवान की सेवा की और भगवान को अपना बना लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।